राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 जून 1993 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण।
चुप साधन कम से कम सुबह कितना समय रोजाना करें? चुप साधन कम से कम सुबह
चुप साधन करना आप आ जाए ना, ये जो कितने समय के आगे जितने समय करो। और दूसरी बात एक और है, ये जो प्रश्न होता है कि वे कितने समय करें, उनको साधन मिला नहीं है। हम पूछेंगे रोटी कितना दिन खानी पड़ेगी, ये पानी कितना दिन पीना पड़ेगा, ये श्वास कितना घंटा लेना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रश्न पूछता है? ये श्वास कितना घंटा लेना बोलो, कितना बार लेना, समझते हैं? अरे जीवन है ये, चुप साथ में कितना करना, कम से कम चुप साथ में करना वो आया नहीं है, बिल्कुल अनजान है इस विषय में, जिनके ये प्रश्न उठता है। वो आ जाएगा तो मतलब रह जाएगा नहीं आपसे, जैसे जल बिना रह सकते नहीं, अन्न बिना रह नहीं सकते, इनसे बहुत विलक्षण उसमें शांति आनंद मिलता है, उसने ये प्रश्न होता ही नहीं, वो समझे नहीं अभी आया नहीं है। जाने दो चुप साधन को, मेरे कभी कभी मन में आती है मैंने चुप साधन बताया भूल करी, छोड़ तो है नहीं, दूसरा साधन आता नहीं और ये सब कब्जे में आता नहीं, रह जाएंगे बिना साधन सफाई। राम राम करो सीधा जो ठीक रहेगा, राम 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 राम, निहाल हो जाओगे। क्यों पीछे पकड़े हो, जो कर सको वो तो करते नहीं और नहीं कर सकते उसके हिचकते हो, वो होता नहीं, रह जाओगे जीते के जीते। अन्नदाता कृपा करो, मेरे पर मेहरबानी करो, आपसे जो सरलता से साधन होता हो वो करो। हमारे ऐसी सूझ की तो हमने लिख दिया, पुस्तक महोदय की इधर उधर बातें सुनी अच्छे लगे, लिख दी, गजब करिया लिखने में बड़ी भूल कर दी। अब उसमें प्रश्न होता है कि कितनी देर करें, चुप से कितनी देर करें, आफत है, आफत आपके ये आफत ही होती है। जब मनुष्य की वृत्ति लगती है परमात्मा में, छोड़ नहीं सकता। कोई ऐसा पूछ नहीं सकता कि जल कितना दिन सेवन करना पड़ेगा, रोटी भी कितना दिन खानी पड़ेगी, बताओ भाई। दवाई के लिए तो पूछते हैं, पर कोई पूछता है रोटी कितना दिन खानी पड़ेगी, ये पानी कितना दिन पीना पड़ेगा और श्वास कम से कम कितना रहना चाहिए, कोई पूछता है? क्यों नहीं पूछते, ये भी पूछो कि कम से कम श्वास कितना रहना चाहिए, इसे कमजोर थोड़ी वो चीज है, समझ में आई नहीं है। कृपा करो अंदा था छोड़ दो उसको, जो आपसे साधन हो सके वो तत्व कर सको।
आप सदा सबके कल्याण की चेष्टा करते हैं, आपकी कृपा से सबको तत्व ज्ञान हो सकता है, हम चाहते भी हैं, तो आप कृपया कुछ ऐसा करें जिससे तत्व ज्ञान हो जाए।
देखो भाई, मैं तो तत्व ज्ञान करा दूं, आपको हो जाए, ऐसा मेरी सामर्थ्य में समझता नहीं हूँ। ये अपनी सामर्थ्य में नहीं समझता हूँ। अगर सामर्थ्य हो तो मेरे क्या पैसा लगता है? आपके तो पैसा है, बड़ी भारी चीज खर्च होता है, वो काम आप करते नहीं, मेरे पैसा लगता नहीं, छू मंत्र आता नहीं, छू मंत्र कर दिया सबको। मैं तो पुस्तकों की बातें पढ़ी है, संतों से सुनी है, उनमें से जितनी बात याद आ जाती है उतनी मैं कह देता हूँ। लोगों को दाम पड़ता है कि बाबा जी बड़े भारी हो, जरा भी है नहीं भाई, बातें कह देता हूँ। मेरे को अच्छी लगी आध्यात्मिक बातें, ये मेरे को अच्छी लगती है, इसमें एक मेरी शौक है और एक मेरी प्रकृति है। जैसे आध्यात्मिक उन्नति हो तो मेरा स्वभाव है कि जल्दी से जल्दी और हर एक आदमी को तत्व ज्ञान कैसे हो, परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे मैं लगा हुआ हूँ, इसमें ढूंढता हूँ। दो चार वर्ष पहले मैंने कहा था यहाँ कि मैं 5-7 वर्ष और जी गया तो ये बहुत सुगमता से हो जाए, ये बता दूंगा मैं आपको। याद होगा किसी को सत्संग में कहा था, मैंने यही कहा था, कुछ शरीर रह जाएगा तो मैं चाहूँ बहुत जल्दी प्राप्ति हो सूपुर, ऐसी बात बता दूंगा। क्योंकि मैं इस खोज में हूँ कि तत्व ज्ञान जल्दी से जल्दी हर एक आदमी को कैसे हो जाए, इस मैं खोज में हूँ। आपका जो हो जाए आप गलत हो जाएगा। सब आदमी मुफ्त खोर है, घूसखोर है, मुफ्त घोर है, अब ना नहीं मेरे मिल जाए। ये तो मैं बताता हूँ अंदाजा, आप उसके अनुसार से ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे से ये भावना है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पुष्प में क्या होगा? पुष्प में ऐसा नहीं लगा है ये साधन चतुर्थ संपन्न भाव, 8 अंतरिम साधन है। अब अंतर साधन में कैसे करोगे? तो मैंने पढ़ा है, वे समझा, सब समझा है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने वेदांत की पढ़ाई की है, ग्रंथ मैंने पढ़े हैं और शास्त्रों के भी थोड़ा हमारे महाराज के तंतु प्रवेश किया है, मैंने थोड़ा देखा है। तो वे देखा है, मेरी भी बात सुनते हैं लोग, कहते स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं है, कोई अर्ज नहीं, मैं तो पढ़ाई हो नहीं भाई, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, ज्यादा नहीं जानता हूँ। मैं मेरे काम पलाव जानता हूँ, अपना काम बने जितना सा जानता हूँ, और ज्यादा मैं जानता नहीं। परंतु मेरी एक धुन है कि जल्दी से जल्दी आदमी को तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, तो मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ भगवान के दर्शन हो जाए जल्दी, क्योंकि ये किसी के हाथ की बात नहीं है, ये भगवान के हाथ की बात है। इसने मेरे से प्रश्न किया कि भगवान दर्शनों की बात आप नहीं कहते, तो दर्शनों की बात अपने साधक के हाथ की बात नहीं है, भगवान देव तो दर्शन हो, पर तत्व ज्ञान प्राप्त करना, योगी बनना, भगवान के प्रेमी हो जाना, ये बातें मनुष्य के हाथ में है। भगवान का दर्शन कर ले मनुष्य के हाथ में बात नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रगट हो ये मैं जाना, अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम में प्रभु प्रगट रहित भी आ गई। वो प्रेम बहुत विलक्षण होता है, उसके बिना रहा नहीं जाता। भगवान के दर्शनों की लगन लगे, वो ऐसी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, चैन नहीं पड़ता है, ये बातें सुहाती नहीं है दूसरी, वो भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती। नारायण हरि भजन में लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निर्जरा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहाती नहीं। ऐसी अवस्था तो भगवान दर्शन ले दे, बिना दर्शनों के प्राण जा रहे हैं, और दर्शन हो तो मर जाओगे, ऐसी अवस्था हो जाए भगवान चट प्रकट हो जाए, परंतु वो साधन करके आप हो जाओ ठीक नहीं है। अवस्था ऐसी है, ऐसी मैं बातें कई कई जानता हूँ, कई कई बातें मेरे सुनी हुई है, कई बातें पुस्तकों में पढ़ी हुई है, उनके अनुसार हो तो मनुष्य की बहुत विलक्षण अवस्था हो जाए ऐसे मैं जानता हूँ। पर उसी अवस्था आदमी कर ले, हाथ की बात नहीं है, हाथ की बात मैं बताता वो आप करते नहीं, तो हाथ की बात नहीं वो सीखते हैं वो कर सकते नहीं, अब क्या करूं बताओ। अगर आपके सच्चे लगन हो तो पहली बात एक राम राम छोड़ो मत, खाने पीने समय भी भोजन करते समय भी राम 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 मन से होता रहे, पानी पीते तो होता रहे और नींद में होता रहे, जागो तो राम राम करता ही मिले, ये अवस्था आपकी हो सकती है। आश्चर्य आवे जैसी बातें हुई हमारे साथ ही गुरु भाई चवन राम जी थे, दस दस बारह बारह तेरह तेरह लाख नाम रोजाना लेते थे, कई दिन सदा सदा की बात नहीं है लेते थे तब। अब 24 तो घंटा है, एक लाख में 6 घंटा लगे एक लाख नाम देने में, आदमी मान नहीं सकता। उनकी डायरी से उसमें लिखा हुआ, मेरे अंतरंग प्रेमी थे, मेरे को बताते थे, तो मेरे समझ में नहीं आई कि 24 घंटा है उसमें 12 लाख रुपया आएगा नाम में कैसे ले ले। इस बात की मेरे शंका रही, पर उनमें संदेह नहीं था, ये जो बोलते हैं सच्ची बात कहते हैं, क्योंकि मेरे से उन्हें मित्रता से बात बताते थे तो झूठी क्यों बोलेंगे, तो उन्हें मेरे अविश्वास नहीं था, पक्का विश्वास था। परंतु विचारू तो कैसे होता है, उन्होंने भी कहा जब नाम की लगन लगती है तो नाम इंद्र देखना मन नहीं करता, कमरे में बैठा हूँ पास में बारी है ऊपर हल्ला हो रहा है, परंतु यू देखने का मन करता ही नहीं, राम 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 ऐसे चलती है जोरों से, जो देखने का सुनने का कुछ मन नहीं करता। नींद आती वो कहते थे 2 घंटा मैं सोता हूँ उसमें भी नींद ठीक से आती नहीं, ये नाम से दर्द लगता है कहते थे। इसका समाधान मेरे हुआ, ये क्या नाम उनका कविराज गोपीनाथ जी महाराज का जीवन चरित्र लिखा है, महापुरुष की लोक यात्रा पुस्तक है। उनके एक बाबा थे गुरु जी विशुद्धानंद जी, क्या नाम विशुद्धानंद जी गुरु जी थे, वो उत्तराखंड में रह करके बहुत सीखी हुई थी बातें विशुद्धानंद जी, उनको गंध वाला बाबा कहते थे, उनके शरीर से सुगंधी निकलती थी, हमारा गंध वाला बाबा उनके शिष्य थे गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी ने और अपना लिखा है कि एक दिन मैं देखा जो मैं 10 नाम इतना लेता था उसमें 5-4 घंटा थोड़ी देर में नाम जप हो गया, तो मैंने गुरु जी से पूछा कि महाराज इतनी देर में जप कैसे हो गया, तो विशुद्धानंद जी बोले कि जब भगवान के साथ में इनका संबंध जुड़ता है उस समय में ये काल नहीं रहता है, तो मेरे संतोष हुआ। ये समय अभी आपका घंटा 2 घंटा है ना, ये काल नहीं रहता है वहां, जैसे आपको नींद आवे तो नींद में इतनी जगह जब में काफी आपको समझ आ गया, कितने सपना आ गया जी देखे तो 2-2 मिनट हो गया, अब 1-2 मिनट में मेरा सर सपना आ जाए। तो इस तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ने पर काल का परिमाण ये नहीं जाता है, दूसरा परिमाण होता है, दूसरा मन लगने पर थोड़ी देर में लाखों नाम आ जाए। तो ये जब पढ़ा तो मेरे समझ में आई वो ये बात है, मेरे समझ में नहीं आई कैसे कर रहे बट 12 लाख नाम जब कैसे कर रहे आदमी, 24 घंटा 24 ही है। तो विचार आया कि जब सुरत लगती है वहां पर तब ऐसा होता है, तो उसे समाधान बात ठीक है, गोपीनाथ जी खुद ने पूछा था, आज मेरे को थोड़ी देर लगी और इतना जप हो गया, ये क्या हुआ महाराज? तो गुरु जी ने बात बताई, कंध वाले बाबा ने कहा कि भगवान के नाभि से कमल निकला, तो उन्होंने अपने बताया खुद, ये सो गए बता दो, मृदंडी निकली, कमल निकल आया नाभि में से, ये उन्होंने खुद ने बताया कैसे नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा प्रकट हुई, कैसे बता दिए। तो उनके शिष्य थे वो, उस मनुष्य की लोक यात्रा में कई चमत्कार लिखे, कई गुरु लिखे, कईयों के पास वो गए हैं। दूसरा संस्करण सपा है जिसे मेरा नाम भी लिखा कि स्वामी जी भी गए थे, तो कविराज गोपीनाथ जी बीमार थे तो मेरे मिलने की मन में थी, तो उनसे मैं मिला हूँ, बीमार पड़े थे तो लोग जाने नहीं थे, मैं कभी मैं एक बार मिल लूंगा, उनमें तकलीफ नहीं दूंगा, बात पूछूंगा, हाँ ना कह देंगे, इतना मेरे काफी। तो मैंने उनसे जाकर पूछा कि सिद्धांत शांकर सिद्धांत सबसे ऊंचा है, अच्छा है, तो क्या ये बात ही है कि इनसे ऊपर की कुछ है? और जो तत्वज्ञान होता है, तत्व साक्षात्कार तो होता है, जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, उस जीवन मुक्त के बाद भी कुछ बात है क्या? उन्होंने क्या कहा, है। क्या है वो? प्रेम की बात, और वो शक्ति की उपासना, शक्ति की। तो मेरे खास विश्वास ही हो पूरा, वे बंगाली थे तो बंगाली शक्ति की उपासना करते हैं, तो शक्ति की उपासना कह दी है इन्होंने, पर वो बात बताई कि इससे ऊंची चीज है प्रेम की। तो मेरे को और जगह मिली ग्रंथों में तत्व ज्ञान से ऊंची, उस तत्व ज्ञान होने पर प्रेम की बात लिखी है मधुसूदनाचार्य ने, उसमें भक्ति रसायन लिखा है, तो भक्ति रसायन लिखा भक्ति रस है, उसमें खुद बढ़िया विवेचन किया है, वो मैंने मन लगा करके पढ़ी अच्छी तरह से, तो उसमें लगा प्रेम। उन्होंने बात बताई है कि अंतकरण होता है, वो पिघल जाता है, तो उस पिघले हुए अंतकरण में संस्कार पड़ते हैं, वो प्रेम होता है, वो प्रेम नहीं होता है। मेरे और ग्रंथों से मिली है, संतों से बात मिली है, प्रेम एक विलक्षण तत्व है, वो स्वयं का होता है, अंतकरण के द्वारा प्रेम नहीं होता है, अभी जो होता है पहले ज्ञान से पहले जो बताया है कि अंतकरण के मल दोष दूर करने के लिए कर्मयोग है और विक्षेप दूर करने के लिए भक्ति योग है, वो भक्ति अंतकरण से होती है, जो असली वास्तव में प्रेम है वो प्रेम नहीं होता है, तत्व की होने के बाद वो प्रेम होता है, तत्व की उससे तत्व की प्राप्ति होने पर जो संतोष नहीं करता है और संतोष हो जाता है जबरदस्ती, मन उसमें भी उत्तृप्त नहीं होता है, उसकी लगन लगती है तब प्रेम प्राप्ति होता है। उस प्रेम का विवेचन मैंने पढ़ा है सुना है, ऐसी प्राप्ति होती है। अब उस प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, तो लगन हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है, मनुष्य प्राप्त कर सकता है प्रेम को, तो वो प्रेम विलक्षण है। जीवन मुक्तों में भी कोई एक प्रेमी होता है, आप पुराने जीवन मुक्त देखो तो जैसे शंकर भगवान है, सनकादिक है, नारद जी है, व्यास जी है, सुखदेव जी है आदि, इनके जीवन की तरफ आप ध्यान दो तो आपको पता लगेगा। सनकादिक गए वैकुंठ में, द्वारपाल ने रोक दिया, फिर वे राम को बने राक्षस बने, रोक दिया, भगवान को पता लगा तो भगवान आए, जैसे ये सनकादियों को कैसे रोक दिया, आए तो उनके चरणों में नमस्कार किया, नमस्कार किया तो तुलसी चढ़ी हुई थी चरणों में, तुलसी की गंध, भागवत साफ परमेश्वर का पढ़ना चाहो भागवत में पढ़ लेना, वो तुलसी की गंध नासिका के द्वारे गई, संक्षोभ मक्षर जुषाम चित्त तन्नो, वह गंध भीतर जाते ही चित्त को और शरीर को क्षुब्ध कर दिया, रोमांच हो गए, नेत्रों में आंसू आ गए, गदगद हो गए, तो चित्त और शरीर वो सब का सब रस रूप रस गंध पांच विषय है, जिससे सबसे नीचा गंध है। आप गंध लिए बना सैकड़ों पर जी जाओ, सुगंधी नहीं ले तो जी जाओगे, परंतु रस बिना नहीं जी सकते, वृक्ष बिना नहीं जी सकते। ये इंद्रियां है, इन इंद्रियों का खुराक मिलना होता तब होता है। बंद गंध की खुराक न मिले तो क्या व्याकुल हो जाओगे, क्या भूखे हो जाओगे आप, क्या बेचैनी हो जाएगी। तो सबसे कमजोर गंध विषय है, वो गंध आने से सनकादिकों की हलचल मची, हलचल हलचल मच गई। तो विष्णु भगवान की गंध अपनी गंध तरह है, क्या हुआ, क्या इन गंध के वश में हो जाए आदमी, आप लोग नहीं होते सुगंधी के वश में। अगर सेवन करते हो आप, तेल फूले करते हो, पुष्पों को सेवन करते हो, सरसरी सुगंध लेते हो, पर वो लिए बिना कोई आप मर जाओ ऐसी बात नहीं है, तो उसमें कोई ताकत नहीं। पर भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, उसकी गंध आई, इसमें महाराज संक्षोभम अक्षर जुषाम अभी अक्षर जो सेवे से तत्व तो परमात्मा का खूब अनुभव था। उन्होंने के शरीर में विस्तृतता आ गई। तो भगवान की कुछ विलक्षणता अलौकिकता है, ये कि वो माया में प्रकृति पर आए, ईश्वर है, विद्यम पढ़े, जीव है, फालतू चीज है। पर जो मैं कहूँ तो लोग गुस्सा करेंगे, मेरे पढ़ा हुआ है विषय, मैं जानता हूँ बताऊँ। पंचदशी मैंने पढ़ी है, पढ़ाई है पंचदशी, मेरे पढ़ाने का काम पड़ा है, पाठशाला पढ़ाने का काम पड़ा मेरा, तो पढ़ाने का काम पड़ा, थोड़ा ही पढ़ा, ज्यादा नहीं, परंतु जो मैं जानता हूँ। तो वो जो बात है, उस ईश्वर के तत्व को नहीं जानते, परमात्मा क्या है, क्या ईश्वर है, इसको आदमी नहीं जानते। वो माया गया प्रतिबिंब है, जैसे जीव है चैतन्यम अधिष्ठानम लिंग देह पुनः तत्छाया लिंग देह हस्ता तत्संगो जीव उच्चते, ऐसे जीव का वर्णन है, ऐसे ईश्वर का वर्णन कर लिया। माया रूप एक जेनु है, उस ईश्वर और जीव जो गसड़े हैं उनका तत्व अद्वैत नहीं, तत्व अद्वैत ही है, ये सब माया के बसड़े हैं। एक माया रूपी जेनु है, उसका ईश्वर एक बछड़ा, एक बछड़ा जीव, ये वर्णन आता है पंचदशी में आता है, मैंने पढ़ाया है। सेठ जी के सामने बात चली, कहते एक माया रूपी बछड़ा, माया रूपी धेनु के बछड़ा है। सेठ जी बोले माया का बछड़ा जीव है, इसे तो सांड है, वो बछड़ा नहीं है। सेठ जी बोले जयदयाल जी, इस बात को जानने वाले बहुत कम है, उस तत्व को जानने वाले। पर ऐसी बातें मैंने सुनी है, जो समझी भी है कुछ थोड़ी बहुत, और उसके अनुसार अपना जीवन बनाने की चेष्टा भी की। वेदांत पढ़ता था तो वेदांत के अनुसार अपना जीवन बनाने की चेष्टा करता था, बना नहीं सका, ये बात एक अलग है, पर नीयत तो मेरी थी, इस नीयत से मैं पढ़ता था। तो सब बातें मैंने करके देखा, तो उसमें कोई विशेष ऐसी बात मिली नहीं बढ़िया। काशी में एक अच्छे संत विद्वान हुए, जो आचार्य परीक्षा में वेदांत के आचार्य में एक खंड में फेल हो गए, और उनको दुख हुआ। मेरे विचार किया ये क्या वेदांत है, जिसको पढ़े आचार्य तक पहुंच गए और फेल होने से दुखी हो गए, ये क्या बात, क्या वेदांत है, अशुद्धा होगी मेरी, क्या बात है, ये क्या वेदांत है भाई, ये क्या निहाल करेगा वेदांत। आचार्य में गए, वहां फैल हो गए। अब फैल में क्या हो गया, फैल हो गया तो क्या पास हो गया, क्या हो गया, नया नया चीज क्या हो गई। तो ऐसी दशा में देखता हूं तो विचार होता है कि ठीक है, बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, सब बड़े अच्छे हैं। तो ये चीजें हैं, और बहुत जल्दी मेरे को ऐसा दिखता है कि इन बातों की जरूरत नहीं है, ये आठ अंतरंग साधन ये कोई जरूरत नहीं है इन बातों की, बहुत जल्दी तत्काल बोध हो सकता है। अरे मैं आपको सामने रखता हूँ, मैं छिपाता नहीं हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि सब तत्वों की बन जाए, सब जीवन मुक्त बन जाए, सबके सब ज्ञानी हो जाए, भाई बहन सब ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे मैं चाहता हूँ। और उन बातों को मैं आप सामने रखता हूँ, अब रखते पड़ भी आपकी बेपरवाह है, इस बात की तो ख्याल ही नहीं है, ये लगन नहीं है मन में इस बात की भूख ही नहीं है, अब क्या करें? बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, भूख नहीं क्या करें? ऐसे सच्चे लगन वाले आदमी मिलते नहीं है, क्या करें बताओ? अब प्रश्न आया कि अचिंत ध्यान है, चुप साधना है, अचिंत ध्यान है, उसमें कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? कुछ हाथ नहीं लगा, जान नहीं सके उसको, मैं जना नहीं सका, विचित्र करके लिख करके भी जना नहीं सका, मेरी असामर्थ्य है। उसमें ये प्रश्न आता तो मेरा आश्चर्य आता है।
असत की और दुर्गुणों की सत्ता है ही नहीं, वर्तमान में हमारे में है नहीं, फिर हम बार बार इनमें फंस जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, इनसे कैसे बचे? इनसे बचने के उपाय बताने की कृपा करो।
उपाय मैं बताता हूँ अन्नदाता, कृपा करो सुनो। आप ईश्वर अंश है इस बात को विश्वास करो। ईश्वर में अगर काम क्रोध लोभ आदि हो तो हो, उसमें दुर्गुण दुराचार हो तो अंश में आ गए, उसमें तो है नहीं तो अंश में कहां से आ गए? आप में शरीर को मैं अथवा मेरा माना है, यहां से आप बताइए। और शरीर को मैं मेरा माना है संबंध जन्य सुख के कारण, संबंध जन्य सुख की इच्छा है आपके, जैसे विषय और इंद्रियों का संबंध हो जाए, उनसे सुख मिले, उस सुख में लुप्त हो गए। अब मैं कहता हूँ बात आपके स्वरूप की, वो बात समझ कैसे आवे? मैं कह रही आप में खुद में नहीं है ये, मैं खुद में नहीं है, कहते मेरे में है, मेरे तो अनुभव होता है, दुख होता है मेरे को, तो मैं कहता हूँ वह जानो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज, आठ बातें बताइए। तो उसमें कोई दोष बताया है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शुद्ध है और सहज सुख राशि, ये बताया है। तो वो लक्ष्य कराता हूँ आपका स्वरूप वो है, उधर आप ध्यान नहीं देते, हमें राग देश होते हैं सब, अब परिसर अगर राग देश होते हैं तो हमारे वो है नहीं। अन्दाता आप में शरीर को मैं और मेरा माना है, उस दिन मैं कहता हूँ मेरे शब्द आ गई, तो शब्द आ गया, अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना, ये शब्द थे। मैंने भी आया है हाँ, याद नहीं आया शब्द आता नहीं, मैं इतनी आजकल भूल होती है, मेरे साथ रहने वालों का नाम भूल जाता हूँ, विवेचन व्याख्यान करते हुए बातें याद आ जाती है पर मैं साथ वालों का नाम भूल जाता हूँ, इसका नाम भूल जाता है, ये है नहीं वो है नहीं, ये है नहीं, तो ये नाम उसने कहा भैया ये है, इसका शब्द है। तो अब इसको हर एक आदमी नहीं समझता, शरीर को अपना मानना और अपने को शरीर मानना दो बात है, बात सीधी सीधी है, जानने वाले बता सकते हैं, अनजाना अब बात है, फर्क क्या हुआ? शरीर को अपना मानना और अपने को शरीर मानना, ये दो बात है, एक सीधी है दोनों। अनजान आदमी कोई बताओ भाई बताओ तो वो मेरे से बातें नहीं सुनी है, इसका विवेचन नहीं सुना है, वो बतावे कोई बात कि मैं अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानने में क्या फर्क है? अरे यही खास चीज है, अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना, ये मानने में सब राग द्वेष ईर्ष्या दम्भ पाखंड आदि सब इसमें भरे हुए हैं। अपने को शरीर नहीं मानता, शरीर को अपना नहीं मानता, उसके नजदीक नहीं आएगा आपको, सिर्फ ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब इसका बोध कैसे हो? तो मेरे को सुगम सुगम युक्तियां मालूम हुई है, वो आपके सामने मैंने प्रकट की है और कई बारों की है, फिर कर सकता हूं मैं, परंतु आप कृपा करके उसे तरफ ध्यान दो तब तो। मैं कुपात्र अपात्र नहीं मानता हूं, तत्व ज्ञान के लिए मनुष्य मात्र पात्र है, कोई अपात्र है ही नहीं। अब ये बात दर्श जरूरी है आपके, सबका अधिकारी माना है, अनाधिकारी कैसे प्राप्त होगा? उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, नीच अधिकारी, चार तरह के अधिकारी होते हैं। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। अभी मैं कैसे बताऊंगा? गीता कहती है अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लव नैव ब्रजनम संतोषसी सर्व ज्ञान प्लव नैव ब्रजनम संतोषसी। अब टीका कर इसको अर्थ लगा दे किसी तरह से, पर मूल पर साफ लिखा है अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य। व्याकरण ज्ञान वाले जानते हैं अपिशेदसी पापे भ्य, यानी कहने सर्व शब्द पेट में आ गया, बहु शुभ जन्म, फिर सर्वे भ्य पर लगाया अपिशेदसी। ऐसा है क्योंकि पापे भ्य सर्वे भ्य और पाप कृत और पाप कृत तर और पाप कृत तम व्याकरण समाप्त हो गई। तम पर उद्दिष्टन है अतिशाय तम विष्टन सूचाता है अर्थ अर्थ तमप और ऐसा प्रत्यय होता है। पापिष्ट कह दो, पाप तम कह दो, ये ज्यादा से ज्यादा। तो सर्वे भ्य पापे भ्य पापकृत तम, पापकृत एक पापकृत होता है, एक दो में दो पापी और ज्यादा उसको पापकृत तर और सब में पापी उसको नाम पापकृत तम। ये तो व्याकरण जानने वाले सब जानते हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं। वो छिपी हो तो आप खंडन कर दो मेरा कि व्याकरण में नहीं है। जो व्याकरण जाने उस आदमी में कई होंगे कह दे कि व्याकरण से गलत बात है। ऐसा सर्व ज्ञान प्लव नहीं, ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण बुजने मन पापों को तर जाएगा। अब इतना पापी, इतना पापी तो आप हम स्वीकार नहीं कर सकते, हमारे पाप नष्ट नहीं हुए ऐसा मानते हैं, परंतु संपूर्ण दुनिया मात्र के पापियों से सब पापी मैं हूं। कैसे कहता? कसाई है, रात में बकरा काटते हैं, रात में गायों को काटते हैं, उनके सामने उनसे बढ़कर मैं पापी हूं, कोई स्वीकार करेगा? कर सकता है? कैसे स्वीकार करेगा? असत्य बात को कैसे स्वीकार करेगा? सर्वे भय पापे भय पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवे नहीं, तो ज्ञान प्लव मिले ही नहीं ज्ञान नौका तो कैसे कर जाएगा? तो उसको भी ज्ञान हो सकता है, ये बात सिद्ध होती है, यही भक्ति में बताई है। अभी चेत सुदुराचारो भजते मन भाग साधु संबंध सीधी बात है। मैं कह दू तो आप ना तो जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना करना चाहते हैं। एक बात बताऊं छोटी सी, मैं भगवान का हूं, ऐसा हो निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, चल बात निर्भय निश्चिंत निशंक और निशोक ये आवे तो परवाह मत करो, वृत्तियां न लगे तो परवाह मत करो, पर भीतर से ऐसे दृढ़ता से जानते हो मैं तो भगवान का हूं ही। क्योंकि भगवान से जो पैदा हुआ ममी वांश हूं, भगवान का अंश हूं मैं, उस बात को भगवान के वचनों को ठीक मानो कि मैं भगवान का अंश हूं। आप कहते विकार दिखते हैं, अब विकार दिखते हैं उस समय विकारों को आदर देते हो, इतनी बात भी मेरी नहीं मानते कि विकार आते जाते हैं आप में हरमन रहते हैं क्या? कोई आप मान सकते हो कि निरंतर काम रहता है, निरंतर क्रोध रहता है, निरंतर बंधन रहता है, विघन में पार रहता है, निरंतर ईर्ष्या रहती है, मात्सर्य रहता है, कोई नहीं स्वीकार करते, आगंतुक है। और आप रहते हो फिर आप में ये दोष है कहाँ? आप में दोष होगा तो आप जैसे निरंतर रहते हो ऐसे दोष निरंतर रहना चाहिए, परंतु आप अपने अगर दोष को मान लेते हो तो आपने सत्ता दोषों को दे दी, अब दोष आपसे दूर हो कैसे? दूर करते हो तो सत्ता दृढ़ करते हो, सत्ता दृढ़ मांगे तभी तो दूर करने का अभ्यास करते हो। दूर करने का अभ्यास करना क्या है कि दोष को दृढ़ करना है, क्यों दृढ़ तभी दूर करते हो, है तभी दूर करते हो, सत्ता पहले कायम करते हो फिर अभ्यास करो दूर करने का। अंगता आप में नहीं है, अब इस बात को लोग नहीं कर रहे हमारे आते हैं। मैं इतनी बात कहूं कम से कम, कम से कम, कम से कम मेरी बात की तरफ ध्यान दें। मैं कहता हूँ आप में नहीं है, तो ये आपके लाभदायक है कि आप में दोष है, या आपके लाभदायक है? बोलो कौन सी बात लाभदायक है? तो आप में नहीं है, ये लाभदायक बात हो आप क्यों नहीं स्वीकार करते? अपने दोषों को ला करके, दोषों की आप सत्ता दोषों के द्वारा आपने अनर्थ किया है, उनको तो सत्ता देते हो। मैं कहता हूँ ईश्वर के अंश हो आप में ये नहीं है, शरीर को मैं और शरीर को मेरा मानने से आए हैं आप में, है नहीं आप में, पर हमारे में कैसे नहीं है बोलो, आते हैं मतलब। तो ऊंधी बात क्यों मानो, सच्ची बात मानो, अंधाता फायदा होगा लाभ होगा कि मेरे में नहीं है, तो होना चाहिए नहीं है, बात तो सच्ची है परंतु देखते हैं, ऐसा प्रश्न आना चाहिए कि नहीं कैसे ऐसा हमारे में है। अब तो क्या कहें बताओ, हम क्या कहें, हम तो बेजार हो जाते हैं कि हमारे उनसे है नहीं, यूं कह सकते हो कि देखते हैं हमारे में। तो आगंतुक है, अब सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये दोष आगंतुक है, यार आप स्वयं आगंतुक नहीं हो, क्या ये बात सच्ची है झूठी बताओ? किसी को दिखता हो आगंतुक नहीं है, हमारे में हरदम रहते हैं, ऐसा कोई भाई बोले, आते जाते रहते हैं आप में कैसे, आपको रहते हो, यार आते हैं और जाते हैं और आप रहते हो, आप आते जाते नहीं हो। अब इतनी बात आपके अनुभव भी बताऊं, इतने पर भी आप नहीं मानो, मैं क्या करूं बताओ? किसका अनुभव नहीं है, क्या काम आता जाता है, क्रोध आता जाता है, लोभ आता जाता है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य षड्रि पूरे हरदम में किसी में भी रहता, कोई भाई बहन बोले कि मेरे में तो हरदम काम रहता है, हमारे हरदम क्रोध रहता है, हरदम लोभ रहता है, हरदम मद रहता है, मात्सर्य रहता है, हरदम ईर्ष्या रहती है, कोई बोलो आप, मैं सबको खुली देता हूँ, जिसके रहता हूँ बोले। अगर आप रहते और ये नहीं रहते तो आपके साथ कहाँ है ये? आपको तो हमारे में है करके सत्ता देते हो उनको, आप अब दूर कैसे करें, कौन करे दूर, किस ताकत है, ब्रह्मा जी की ताकत नहीं दूर कर दे, जब आपने मान लिया हमारे में है तो क्यों निमंत्रण देते हो इनको? आप में आते जाते हैं, कभी कामना हुई, कभी लोभ हुआ, कभी ईर्ष्या हुई, कभी द्वेष हुआ, कभी पाखंड हुआ, कभी कभी होते आते हैं जाते हैं, तो आप में नहीं है, इनको बात आप मानने को तैयार नहीं, आप कहते हैं नहीं है, हमारे तो आते हैं, हम कैसे माने आपकी बात को, हमारा अनुभव हमारे में तो है। इतने नहीं समझते कि आपके इनको कायम रखने में लाभ है, इनमें न मानने में लाभ है, इसको भी आप नहीं स्वीकार करते, अब मैं क्या करूं बताओ? युक्ति संगत बात, अनुभव सिद्ध बात कहता हूं कि आप में हरदम नहीं रहते जी, आपने निमंत्रण दे दिया कि हमारे को है तो दोस्त जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, जब आपने कहते दोस्त हमारे में है तो कैसे जाएंगे? उनको स्वीकार कर दिया आपने, आप ईश्वर जान से सत्य हो तो सत्य संकल्प ईश्वर है, ऐसे आप भी सत्य संकल्प हो, नहीं मिटेंगे वो दोष, कैसे मिटेंगे? आपने मान लिया है दोष तो कैसे मिटेंगे? कम से कम इतना तो स्वीकार करो कि हरदम हमारे ना काम रहता है, ना क्रोध रहता है, ना लोभ रहता है, ना ईर्ष्या रहती है, ना दंभ रहता है, ना पाखंड रहता है, आते जाते रहते हैं, ये तो अच्छी सीधी बात है, इसमें संदेह हो तो आप पूछो, इतने बड़े खूब पूछो, इसमें संदेह हो तो पूछो, मैं एक बात कहता हूं उसमें संदेह हो तो पूछो, बोलो। घंटा भर भी काम नहीं रहता, घंटा भर भी क्रोध नहीं रहता, घंटा भर भी लोभ नहीं रहता, अरे आप रहते हो, आप रहते हो तो आप में होता तो आपके रहते हुए मिट नहीं सकता वो, ये सामने मिटते हैं, आते हैं जाते हैं, आप अलग हो, ये बात सबका अनुभव है, फिर भी मेरे कहना मानते नहीं, अब क्या करें बताओ? मेरे तो ऐसे मन में आ कि ये अनुभव आपको मैं बता दूं, अनुभव बता दूं आपका, मेरे में सामर्थ्य नहीं है दूर कर दूं, दोषों को दूर करने की हमारे में सामर्थ्य नहीं, परंतु आपको बता सकता हूं, निवेचन कर सकता हूँ, इतने पर भी आप मानते नहीं मेरी बात, क्यों स्वामी जी कहते हैं अपनी बात कहते हैं, तो अपनी बात आपको क्यों कहते हैं? स्वामी जी ऐसा है इस बात कहते हैं, तो आप मेरी बात करने से मेरा फायदा है कोई? मैं आपको संबोधन करता हूँ, आप में वास्तव में आप में खुद में नहीं है, आप परमात्मा के साक्षात अंश हो। कितनी बढ़िया बात है, ऐसे स्वीकार करो तो आपके क्या हानि होती है, क्या नुकसान होता है बताओ? आपके नुकसान क्या? हमारे अनुभव में नहीं है, हमारे उनके काम क्रोध आते हैं, होते हैं हमारे, तो इस वजह से आपके कारण कैसे मान लें? अच्छा मत मानो भाई, हम क्या करें, कैसे मन आपकी बात, हमारे दिखते हैं, हमारे में आते हैं, हमारे में है। तो आप अपने अनुभव को सिद्ध करते हो, मेरी बात को रद्दी करते हो, तो मैं आपके साथ शत्रुता तो रखता नहीं, आपका अनिष्ट मैं चाहता नहीं, पर मेरी बात नहीं मानते, अपना अनुभव से मैं हमें दोहरा उपदेश करते हैं, कहते नहीं है, कैसे नहीं है बोलो, अब तो क्या दूंगा उत्तर। अब ज्यादा से ज्यादा मैंने बात बताई कि मेरी बात मानने से लाभ है कि आपकी बात आप मन उसमें लाभ है, लाभ किस बात में है?
आपकी मानने में लाभ है।
तो वे मेरी बात क्यों नहीं मानते? कह सकते हो कि भाई हमारे को अनुभव नहीं हुआ ऐसा, कि हमारे में काम नहीं है, ऐसा हमारा अनुभव नहीं हुआ, यूं तो बोल सकते हो हमारे काम है, हमारा तो अनुभव ऐसा ही होता है। अब कैसे नहीं है, अब बात को बात मेरी स्वीकार कर लो, फिर कि भी हमारे में तो ये दोष है, हम कहते हैं आगंतुक है, तो यार समझ में आ जाएगी चीज, आगंतुक है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, सबका अनुभव है ये आगंतुक है। अब आगंतुक को आप जमा मानते हो, सत्य संकल्प के अंश होने से आप भी सत्य संकल्प हो, क्या तो है तो आप में रहेंगे ही, ब्रह्मा जी भी नाश करो नहीं सकते, कैसे नाश करेंगे, आपने मानना है। मैं बात कहता हूँ तो स्वामी जो खंडन क्या है, अपनी पुस्तक ही बताते हैं, अपनी बात ही बताते हैं और वो खंडन करते हैं। अरे खंडन कहना कि मैंने साधक संघ इतनी बड़ी लिखी है तो श्लोकों पर टीकाएं अनेकों की है, मन किसी टीकाकार का खंडन किया है क्या? साधक संघ इसी बड़ी पोती है, तुम देख लो। खंडन कहने का मेरा विचार ही नहीं है, मन में ही नहीं है, मेरा भाव ही नहीं है, खंडन से क्या फायदा हुआ? दयानंद जी ने सबका खंडन किया, परंतु ये तो बात उन्होंने नहीं बताई खंडन करने से मुक्ति होती है, ये साधु तो नहीं बताया उन्होंने, खंडन करना इतना बढ़िया, सबका खंडन किया, पर खंडन से मुक्ति होती है बताया, साधु ने बताया आज, तो मैं वो क्यों करूंगा? तो सच्ची बात है कि आप में आप निर्दोष हैं। मैं बताया परसों सुबह एक बात आई थी, मैंने सुबह परसों सुबह मैंने बताया था 5 बजे के समय प्रार्थना में साफ साफ कहा था मैंने, वो टेप टेप सुन लो, परसों कहा था ना,
दयानंद जी ने जो साधन बताया है उसको खुद आर्य समाज ही नहीं करता,
केवल खंडन पर गई हो
रहा है उनका जो साधन
बताया, आर्य समाज से कर ये मोलना भी आर्य समाज से बीमार हुए तो लोचना में ले गए, एक सदन बीमार है वो चलो है बातें करी, इसके बाद मेरे साथ हो गए सत्संग सुनते, पर इनके मन में धारणा थी कि स्वामी जी है तो आर्य समाज ही, पर इनको सनातन की बात बताते हैं, इनकी धारणा ही पूछ लो इनको, महीनों भर सात तक मेरे सत्संग सुने तो कहते है तो स्वामी जी आर्य समाज ही, पर लोगों को ऐसी ऐसी बात कहते हैं।
कहते हैं दयानंद जी ने तो बातें अच्छी बताई, अनुयायियों ने तो उनका कर दिया
खराब, ये अनुयायी होते हैं, तो मैं कहता हूँ ये भगतिया है ना, भगतिया नाश करता है, जो कोई संत महात्मा होते हैं उसे भगतिया होते हैं, ये सत्यानाश कर देते हैं, पक्ष लेते महाराज मारे महाराज ऐसे ऐसे, अरे काम नहीं करते, कहना नहीं करते उनका, अज्ञा ही बनते, जय बोल गए, जय बोल रही हूँ, तो क्या होगा? जैसे आप कोई नहीं बता सकते कि कोई दोष आप में हरदम रहता है, और आप स्वयं हरदम रहते हो, तो हरदम रहने वाले के साथ कभी आवे कभी जावे, वो साथ में कैसे है बताओ? इसका उत्तर दो कोई भी, कोई भाई उत्तर दो।
लोभ के कारण से सब कोई पाप करते हैं,
तो लोभ के कारण करते हैं, लोभ हरदम रहता है, ये माना हमारा, इनका अर्थ ये लोभ हरदम रहता है, इस कारण पाप करते हैं लोग, तो लोभ में आकर पाप करते हो, धन सामने तो तुम लोभ करते हो, धन अभी लोभ है आप में, कभी आता है उसको निरंतर मान लेते हो, तो आप सत्य संकल्प के अंश हो, आपका संकल्प सत्य हो जाएगा, आप में लोभ रहेगा हरदम, क्यों? आपने निमंत्रण दे दिया, एक दुष्ट तो बिना निमंत्रण के जबरदस्ती आते हैं, यार निमंत्रण दे पर छूटेंगे?
मैं और खाऊं खाऊं, इन दोनों दोषों में से कौन सा दोष बड़ा है?
मैंपना ही दोष है, मैंपन से होता है, मैं नहीं है। कई वर्षों पहले गंगा जी किनारे मैंने कह दिया कि अहम ब्रह्मास्त्री, थोड़ा पढ़ा लिखा भी कह क्या बोलता है, मैं और अस्थि अस्थि होना, मैं होना तो अहम होना चाहिए, मैं अहम ब्रह्मास्त्री, परमात्मा के तरह संत बैठे थे, वो बोले कैसे बोलते हो? व्याकरण में जानता हूँ, व्याकरण में पढ़ा हुआ हूँ, पढ़ाई भी है, मेरा तात्पर्य है कि अहम नहीं है और ब्रह्म अस्ति ब्रह्म है, ऐसा कह तो संतोष हुआ, मैंने कहा ब्रह्म अस्ति, अहम ब्रह्म अस्ति, कोई थोड़ा भी पढ़ा हुआ वो सब जानने वाला क्या इसको शुद्ध कहेगा? अशुद्ध बोलते हैं, मैं शुद्ध बोलता हूँ, बढ़िया रीति बोलता हूँ, आपके बड़े लाभ की बात बोलता हूँ, अर्थ क्या हुआ? अहम नास्ति ब्रह्मास्ति, अहम ब्रह्मास्ति, मन अस्ति सत्ता तो ब्रह्म की है, अहम है ही नहीं, ये मेरा अर्थ है, अहम कहाँ है? अहम आपका, अहम अपना प्रकृति, भूमि आप अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में बदला प्रकृति अपरायम विद्यम विद्धि पराम, आप परा प्रकृति हो परमात्मा की, ये अपरा है तो अहम तो अपरा प्रकृति में गया, जैसे मिट्टी का ढेला है ऐसे अहम है, मिट्टी के ढेले के साथ आठ हुए ना, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम अपरा प्रकृति है, तो अप्रकृति का अंश हुआ, तो मिट्टी के ढेर लगते रहे हम, आपका स्वरूप कैसे हो गया हम? थोड़ी बात है स्वामी जी कहते हैं, अरे गीता जी की बात कहता हूँ, मेरी बात थोड़ी कहता हूँ, गीता जी की बात है, पढ़ लो आप देख लो, मैं सुनते नहीं मानते नहीं, तो मैं और खाऊं खाऊं तो वृत्ति आपकी, ये मैं कि खाऊं खाऊं एक दशा है, एक तरह के है, आप ना खाऊं खाऊं है ना आप मैं है, ये उसका उत्तर है, हाँ मैं भी नहीं हूँ, खाऊं खाऊं भी नहीं हूँ। बोलो
सेवक से भाव विनु भवन तरी, तो इसमें क्या हमारी समग्र सामर्थ्य केवल सेवा में ही व्यय होनी चाहिए? यदि
और क्या करोगे,
यदि अधिकांश शक्ति सेवा में लगाएं और थोड़ी सी सामर्थ्य भोगों में लगाएं तो हमारी क्या गति होगी?
दुर्गति, आपकी दुर्गति होगी, भोगों में थोड़ी सी लगा दो, थोड़ी घड़ी बहुत ही घड़ी है, आपके नाश करने में कम नहीं है, नाश करने हो गया। अच्छा,
ये कोई गौशाला में काम करने वाले इन्होंने पूछा है कि गाय अगर मर जाए तो अब तक तो हम जमीन में गाड़ देते थे, अब जमीन मिलती नहीं है तो क्या खाल उतारने वाले को मृत शरीर दिया जा सकता है?
दिया जा सकता है, पैसा बट रहा है, मतलब आज मृत गाय को दी जाए तो चीरने वाले पैसे देते हैं, उनके मांस काम आता है, चमड़ा काम आता है, हड्डी काम आती है, कितने कितने पैसे दूंगे याद नहीं, पैसे देते हैं वे, पैसे देते हैं तो खरीदते हैं, तो उनके काम आता है तो पैसे देते हैं, पैसा कौन देता है, वो पैसा देना तो गायों में लगा देना, अपने काम में मत लाना कभी।
धार्मिक दृष्टि से दोगली तथा देशी गाय में क्या कोई अंतर है?
देशी गाय बढ़िया है, ये भैंसों की तरह है, गाय गाय नहीं है यार, विदेश बोलती आवाज लेवल कैसी है, दूध ज्यादा दे दे, आज सरकार को नमस्कार करें, सत्यानाश कर दिया हिंदुस्तान का, अब गायों को काट रहे हिंदुस्तान गायों की, विदेशों में आंत बड़ी कीमती बिकती है, आंत मांस बिकती है, क्या है पनीर बनाते हैं जेब में, आंत हिंदुस्तान की गाय की जैसी हो गई, विदेशी गाय की आंत भी नहीं होगी, इस वजह से टुकड़ा टुकड़ा कर करके पांच पांच हजार दस दस हजार बीस बीस हजार रुपया एक गाय के काटने से मिलते हैं, इस वजह से गाय काटते हैं, ये भैंसों के तेल लाल रख दिया, इनकी गर्मी लगती है जैसे भैंसा होता है, इस तरह से उनसे कुछ ठीक हो जाए, बैल हो तो ऐसी फाय कहाँ जो जुआ कहाँ रखे, साफ होते हैं। देसी गायों में जो सात्विकता है वो इनमें नहीं है, इनमें क्रोध बहुत है, खांसी बहुत है, दूध ज्यादा देती है खांसी ज्यादा है, दूध भी देती है ज्यादा, वन दूध में घी कम होता है, आप करके देख लो, मैं कहता हूँ मेरे तो मेरे पर तो विश्वास होता नहीं, क्यों मैं गाय रखता नहीं, ना दूध दूधता ना भिलोना करता हूँ, मेरे क्या पता, आप करके देख लो, दूध ज्यादा होता है घी कम होता है, हमारे गाय के पाव अच्छी गाय होती है पाव घी रोजन आता है 20 रुपया भर।
कहते हैं कसाईयों से गाय अथवा बच्चियां छुड़ाने पर जो ब्याह जाती है वो इतना कम दूध देती है कि अपने बच्चे का भी पेट नहीं भर सकती,
गाय का दूध बढ़ाने की गो अंक में बातें बताइए, वे बातें करो तो गौ का दूध बढ़ेगा, कारण क्या है, आप गऊ के बच्चा बच्ची को दूध पीने देते नहीं, गऊ माता मोहन अगर तू खास जाते हैं बेचारे हो तो दूध उसको दूध लेते हो, बच्चे को मिलता नहीं दूध, तो वो ब्याह दूध कैसे होगा, बचपन में दूध नहीं मिला उनको, अब कहते हैं सब दूध कम होता है, बच्ची को पिलाओ दूध तो दूध देने वाली गाय बनेगी अगारी, उसमें तो लो बेटा चूस कर लेते ठीक तरह से, नहीं तो सुई देकर दूध लेते हो, सब काट देते हो, कांपन लग जाएगा बेचारी, ऐसी ऐसी हत्या करते हो, फिर गाय का दूध नहीं होता, दूध कैसे हो जाएगा, बताओ सुई लगाकर निकाल दे तो दूध सब चूस करके, बसरा बच्ची को मिलने नहीं देते, बसरा बच्ची मर जाते हैं, कलकत्ता आदि में दूध है जिसमें बसरा बच्ची मर जाते हैं, गाय दूध करके और बेच देते हैं, दे देते हैं दूध टल जाते तो कसाई दे देते हैं, ये तो कलकत्ता ही ऐसा है।
ये कहते हैं कि अगर उन्हीं गायों को यदि विदेशी नस्ल के सांड के द्वारा यदि गर्भाधान करा दिया जाए तो उससे अच्छी नस्ल की बच्चिया हो जाती है, तो इस विषय में आपकी क्या राय है?
हमारी राय नहीं, बनशंकर होता है, बनशंकर करते हैं तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, बिना बच्ची के वहाँ गाय रखी हुई बनशंकर पैदा करते हैं, जैसे आज दोगला आज भी बनशंकर होता है, जो गाय बनशंकर है, खुद ही बनशंकर है, बनशंकर इसलिए करते हैं, हम तो बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते
है,
कहते हैं कि दोगली गाय है वो देसी गाय के मुकाबले कई गुना दूध देती है, तो आपकी राय में इसको बढ़ावा दिया जाए या नहीं?
हम तो बढ़ावा नहीं देते भाई, हम तो अच्छी नहीं मानते, अरे भाई माहेश्वरी सभा हुई उसमें प्रश्न आया, गंदी बात ऐसी कि हिंदुओं की नस्ल सुधरे इस वास्ते पति से नहीं जो संबंध करो तो नस्ल सुधर जाएगी हिंदुओं की, हैदराबाद में सभा हुई माहेश्वरियों की, मैं था पंडरपुर था ना, तो वहां से रात रात में पहुंचा, वहां मैं मेरी बात सुनते ही नहीं। मैं कहा भैया तुम अपनी कन्या धनी को दो तो धनी को न दे करके खर्चा करते हो, उतना गरीब एक वेश को कन्या दे दो और उतने पैसे उनको दे दो तो वो भी लखपति बन जाए। तीन तीन चार चार पांच पांच लाख रुपया खर्च करते हैं, दस दस लाख खर्च करते हैं और अंग अंग पांच सात दस करोड़ आदमियों को बहते हैं। आप क्यों करते हो? इतनी कृपा करो अल्लाह का, साधारण आपके नेत्र गोत्र आदि सब मिलता हो उसमें कन्या दो और कन्या के साथ दस लाख रुपया उसको साथ दे दो जो बहुत धनी भी बन जाए ब्याह भी हो जाए। पर वे मन ही नहीं। रात रात मैं पहुंच गया हैदराबाद तेजी से मोटर सही ये साथ वो माहिर से संभाल है क्या तो सही मन में बात सुने ही नहीं क्या करें बताओ। आप सुनते हो उसी करो आप उपयोग ये कि आपको एक बच्ची के ब्याह में पांच से आठ लाख रुपया लगाना पड़ता है उतना ही थोड़े में कुमकुम कन्या में और लड़के को दे दो ठीक तरह से और पांच लाख रुपया लगाते हो वे उन लड़के को दे दो तो वो एक धनी बन जाए और ब्याह भी उसे हो जाए आगे ठीक हो जाए सब काम ठीक हो जाए। पर नाम के लिए रुपया लगा देंगे बिजली में रुपया लगा देंगे और काम में रुपया लगा देंगे भर को नहीं दे रहे ऊंचे ऊंचे को देंगे पांच पांच दस दस लाख रुपया देते हो करोड़पति को जिनके पांच सात दस करोड़ रुपया है उसको बेच देंगे उनको लाखों रुपया करोड़ रुपया दे देते हैं। मैंने कहा सीधी सादी बात है गरीब है उसको रुपया भी दे दो और कन्या भी दे दो तो वो धनी बन जाए। मैं मानते कहा है हमारी बात मानती
कहते हैं कि पहले तो बछड़ा होता था तो लोग खुशी मनाते थे अब बच्चा होने पर खुशी मनाते हैं और बछड़ा होने पर दुख मानते हैं क्योंकि खेती में तो बछड़े का उपयोग नहीं ट्रैक्टर आ गए तो गौशाला
असली नाश करने की युक्ति है ये गो वंश का नाश करना हिंदू वंश का नाश करना दो बात तो सरकार के खास भीतर में बैठ गई काटी है जिसे कत्ल कर देना वंश नहीं रहने देना बसा बची को कत्ल कर देना और हिंदुओं का कत्ल कर देना हिंदुओं को वंश अकाली बढ़ने दे देना हम दो और हमारे दो मरेंगे तो सब मर ही जाएंगे कि नहीं कैसे बढ़ेंगे बताओ हम दो और हमारे दो सब ये जरूर प्रचार हुए सिनेमा में ये प्रचार है व्याख्यान में प्रचार है अखबार में ये प्रचार है दिखाते जोर से करो महान अनर्थ हो रहा है महान पतन। मैं पूछू मैं कहूँ तो लोग कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं बोलू बेसम मेरी बात कौन माने ये मैं जहाँ कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं कितने दौरा पाला जाता है ये तो पहले पांच पांच सात सात बालक होते थे वे पालने वाली माया का मूर्ख थी वो अपने अभी राठी जी का सांत्वन शरीर भगीरथ जी का सात भाई है सात भाई बोलो तो माया मूर्ख है वो मेरे तो बंदे नहीं माता तो मेरे बेचारा ऐसी माताओं को नमस्कार करना चाहिए। अब आज छोरियां उनके एक दो संतान हो जाए तो बस करो अपरेण करो अब करो स्वयं आप अपना नाश करो आपकी उन्नति कौन करे। मेरी सत्संग करने वाली छोरियां छोटी लड़कियां एक दो संतान हुआ है मेरे से एकांत में पूछे अब क्या करें। मैं तो लड़की की बात बढ़िया मानता हूं कि मेरे माता पिता बाप ऐसा माने मेरे को ऐसे मानकर शुद्ध भाव से पूछे मैंने अब क्या करें एक ही नहीं मेरे सामने ऐसी बात कह दे जो माँ के सामने कह दू तो मैं उनका भाव देखता हूं तो आदर होता है मन में नमस्कार करने लायक है कितनी श्रेष्ठ इस देश पर इतना विश्वास है लोगों का घर की बातें कर लेते
ये गाजियाबाद गौशाला में है वेद प्रकाश जी गोयल ये कहते हैं कि हमारे गौशाला में काफी बछड़े हैं कोई पालने के लिए मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं
है कहते नहीं क्या करें ये समस्या आई मथानिया में फतेह राम जी ने गौशाला खोली है वे कहते हैं बछड़ों का क्या करें दूसरों को सूझा कराने में पाप लगता है, राव का कोई लेता नहीं, हलचल होता नहीं, हल की जरूरत नहीं, ट्रैक्टर आ गए। सत्यानाश करने का उपाय बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं आज तक।